الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه الصلاة والسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. واقعہ کربلا سیریز کی 17ویں قسط میں انشاءاللہ ہم امام علیہ السلام کا سفر بیان کر رہے تھے کہ جو مکہ سے کوفہ کی طرف امام نے طے کیا, اور جیسا کہ ہم مقام ذو حسم یا ذو حسم کو بیان کر رہے تھے, ذو حسم جہاں پر امام کی ملاقات یزید حر ابن یزید سے ہوئی, حر سے امام کی ملاقات اور حر کے لشکر کا آنا. کل عرض کیا تھا کہ جب یہ لوگ پہنچے تو یہ پیاس سے نڈھال تھے, امام علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں نے ان سب کو 1000 کا جو لشکر تھا ان کو پانی سے سیراب کیا, حتیٰ ان کے جانوروں کے لیے بھی پانی پلائے سب کو. امام نے حر سے سوال کیا, ہماری مدد کرنے کے لیے آئے ہو یا ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آئے ہو؟ حر نے جواب دیا کہ ہم آپ کا مقابلہ کرنے اور آپ کو روکنے کے لیے آئے ہیں. امام علیہ السلام نے جواباً کہا, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس کے بعد جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو امام نے اپنے جو مؤذن تھے جناب حجاج ابن مسروق جعفی ان کو اذان کے لیے کہا. جب اذان کے بعد امام اقام نماز کے قیام کے لیے جماعت کے لیے اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے اور حر سے سوال کیا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ نماز پڑھیں گے یا اپنی علیحدہ جماعت کرائیں گے؟ تو حر نے کہا کہ نہیں, ہم آپ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھیں گے. تو چنانچہ امام علیہ السلام آگے آپ کے ساتھی آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور حر اور ان کا لشکر ان کے پیچھے کھڑے ہوئے اور نماز ظہر کی جو ہے وہ جماعت ادا کی. نماز کے بعد امام علیہ السلام کھڑے ہو گئے, تلوار کی ٹیک لگا کر حر اور اس کے لشکر سے امام نے گفتگو کی, خطاب کیا. اس جو گفتگو امام کی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. امام نے فرمایا, اے لوگو, میری گفتگو تمہارے لیے اتمام حجت ہے اور خدا کی بارگاہ میں ادائے فریضہ ہے. میں تمہارے پاس اس وقت تک نہیں آیا جب تک کہ تمہاری طرف سے میرے پاس تمہارے خطوط اور ایلچی نہیں آئے, اور وہ بھی مسلسل اور پے در پے. اور تمہارا کہنا تھا کہ ہمارا کوئی امام اور پیشوا نہیں ہے, لہذا آپ ہمارے پاس تشریف لائیں تاکہ اس طرح اللہ تعالی ہماری ہدایت اور رہنمائی فرمائے. لہذا اگر تم اپنی اس دعوت پر قائم اور اس کے پابند ہو تو اب میں تمہارے پاس آ چکا ہوں, لہذا میرے ساتھ پختہ عہد کرو کہ میرا ہر طرح سے ساتھ دو گے. لیکن اگر میرا آنا تمہیں ناگوار ہے تو میں ابھی وہیں کو واپس چلا جاتا ہوں جہاں سے چلا تھا. تو یہ سن کر جو ہے اس کا جو لشکر تھا حر کا اور حر وہ خاموش رہے, انہوں نے کوئی جواب مثبت یا منفی نہیں دیا. پھر نماز عصر کے بعد بھی امام نے, چونکہ عصر کی نماز کی اقتدا بھی حر اور اس کے لشکر نے امام کی اقتدا میں نماز پڑھی, عصر کی نماز کے بعد بھی امام علیہ السلام نے دوسرا جو خطبہ تھا ایک اور بات خطبہ یہاں پر ان لوگوں سے بات کی. امام نے فرمایا, اے لوگوں, اگر تم خدا سے ڈرو اور اس بات کو تسلیم کر لو کہ حق کو اہل حق کے پاس ہی رہنا چاہیے تو یہ بات خداوند عالم کی خوشنودی کا موجب ہوگی, اور ہم اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں پر حکومت اور ان کی رہبری کے لیے ان بنی امیہ سے زیادہ شائستہ اور سزاوار ہیں جو اس مقام کے غلط دعوے دار ہیں اور ہمیشہ ظلم و فساد اور خدا کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہیں اور اسی پر ڈٹے ہوئے ہو. ہم سے امام فرماتے ہیں ہم سے
डटे हुए हैं, हमसे रूगरदानी कर चुके हैं और हमारा हक को नहीं समझते। अब तुम्हारी वो मर्ज़ी नहीं जो तुमने खतूत में और एलचियों के ज़रिए ज़ाहिर की थी, तो मैं अभी यहीं से वापस लौट जाता हूँ। इमाम ने जब खुतबा ख़त्म किया तो हुर ने यहाँ पर कहा कि हमें इन दावतनामों का कोई इल्म नहीं है। तो जब इसने ये कहा तो इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने साथी जैसे उकबा बिन समान को कहा कि वो दोनों वो थैले ले आओ जिसमें अहले कूफा के खतूत हैं। जब वो ले आए तो इमाम ने उन खतूत का ढेर हुर के सामने रख दिया। तो हुर कहता है कि हमने ये खतूत नहीं लिखे, हम तो बस इस बात पर मामूर हैं कि आपका सामना करते ही आपको इब्ने ज़ियाद के पास ले चलें। इमाम ने मुस्कुराकर कहा कि अल-मौत अदना इलैका मिन ज़ालिक, तो उस वक़्त तुम्हारी मौत तुम्हारी इस पेशकश की नस्बत ज़्यादा करीब है। इसके बाद इमाम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि उठो और तैयारी करो। बस सब काफिले वाले तैयार होकर अपनी सवारियों पर सवार हो गए। इमाम ने अपने काफिले से कहा वापस चलो, तो ये सुनकर हुर और उसके साथी आड़े आ गए और काफिले की रवानगी में माने हुए। तो यहाँ पर वो मशहूर जुमला था इमाम का, इमाम ने कहा सकलत का उम्मो कयामा तुरीद, तेरी माँ तेरे गम में बैठे, अगर तू चाहते क्या, अगर तू चाहता क्या है। ये सुनकर हुर ने कहा अगर आपके अलावा किसी और शख्स ने मेरी माँ का नाम लिया होता तो उसे बताता कि मेरी माँ का नाम कैसे लिया जाता है, लेकिन खुदा की कसम चूँकि आपकी माँ सैयदा निसाए आलमीन है लिहाजा मैं कुछ नहीं कहता। इमाम ने हुर से पूछा कि तुम क्या चाहते हो। हुर ने कहा मैं आपको इब्ने ज़ियाद के पास ले जाऊंगा। इमाम ने फरमाया ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा मैं हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। इस तरह के जुमलों का आपस में तबादला हो रहा था तो हुर ने कहा कि मुझे आपसे जंग करने का हुक्म नहीं है, बल्कि मेरी जो ड्यूटी है मामूरियत है वो ये है कि मैं आपसे उस वक़्त तक जुदा ना हूँ जब तक आपको कूफा नहीं ले जाऊँ, लेकिन अगर आप तैयार नहीं है कूफा जाने के लिए तो फिर ये है कि ना आप मदीना चलें ना कूफा, बल्कि कोई और रास्ता इख्तियार करें ताकि मैं ख़त लिख कर अपने ज़ियाद को इस सूरत हाल से आगाह करूँ और उसका हुक्म अपने लिए ले आऊँ। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर उज़ैब और कादसिया से बाएं तरफ के रास्ते को इख्तियार किया। हुर जो है वो आपके साथ इमाम के साथ साथ चल रहा था। तो यहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम का एक और जो छोटा सा खुतबा है वो यहाँ पर है कि इमाम ने फरमाया कि हालात ने जो रुख इख्तियार किया है कर लिया है वो आप देख रहे हैं। दुनिया बदल चुकी है, दुनिया की नेकी ने अपना मुंह मोड़ लिया है, अब उसका सिर्फ तलछट बाकी रह गया है। जिस तरह किसी बर्तन की तह में थोड़ा सा पानी रह जाता है कि जिसे ज़मीन पर गिरा दिया जाता है, और पस्त और नाचीज़ ज़िंदगी बाकी रह गई है, नागवार चरागाह के मानिंद। आया आप लोग नहीं देख रहे कि हक पर अमल नहीं हो रहा और बातिल से मुँह नहीं मोड़ा जा रहा। ऐसी सूरत में मोमिन का हक बनता है कि वह अपने परवरदिगार की मुलाकात की ख्वाहिश करे। फिर वही मशहूर जुमला इमाम ने कहा कि अरल इन्नी अरल मौत इल्ला सआदा वलल हयात मा अज़्ज़ालिमीन इल्ला बरमा। इमाम ने कहा कि मैं मौत को सआदत समझता हूँ और ज़ालिमों के साथ ज़िंदा रहने को नंग आर समझता हूँ। जब इमाम का ये खुतबा इमाम ने इरशाद फरमाया तो जनाब ज़ुहैर इबन क़ैन जो है वो खड़े हुए और अपने साथियों से कहा कि आप लोग कुछ कहेंगे या मैं बात करूं। तो साथियों ने कहा आप ही बात करें। तो जनाब ज़ुहैर इबन क़ैन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक बात की। इमाम को जनाब ज़ुहैर इबन क़ैन ने कहा फ़र्जंद रसूल, हमने आपकी बुलंद पाया गुफ्तगू को अच्छी तरह सुना है, तो ये फ़र्जंद रसूल खुदा की कसम अगर इस दुनिया की सारी नेमतें हमारे इख्तियार में दे दी जाएं और हमें मौत भी ना आए और किसी किस्म की नेमत भी कम ना हो, फिर भी हम दुनिया के तमाम आसाइशों को ठोकर मारकर आपके हमरकाब होकर लड़ने को तरजीह देंगे। तो ये जब जुमला कहा इमाम ने जनाब ज़ुहैर के हक में दुआ की
यहाँ से चलते रहे इमाम का काफिला और हुर ज़ाहिर साथ साथ था, तो जो हुर को मौका मिलता इमाम से बात करने का तो वो ये कहता था इमाम को कि खुदा के लिए अपनी जान को बचाने की कोशिश करें, मुझे डर है कि आपको शहीद किया जाएगा। तो एक मौके पर इमाम ने जब हुर की ये बात सुनी, इमाम को जलाल आ गया। इमाम ने कहा अबिल मौत तुखव्विफुनी वहल यदुबिकुमुल खुतब। इमाम ने कहा, तर्जुमा अर्ज़ कर रहा हूँ, ए हुर तुम मुझे मौत से डरा रहे हो और तुमसे और हो ही क्या सकता है कि तुम मुझे कत्ल कर दो, लिहाजा मैं इस मौके पर कबीले औस के उस शख्स के अशआर पढ़ूँगा जो उसने रसूल खुदा की नुसरत के मौके पर अपने चचाजाद भाई के लिए पढ़े थे। वो क्या था? वो शेर जो है, मैं ज़रूर जाऊंगा और मौत किसी जवान मर्द के लिए बाइस नंगोआर नहीं है जबकि उसका इरादा बरहक हो और मुखलसाना कोशिश करें। यूं इमाम ने कुछ अशार यहाँ पर पढ़े। आखिर में इमाम ने कहा, अगर मैं ज़िंदा रह गया तो पशेमान नहीं होऊंगा और अगर मुझे मौत आ गई तो मुझे मलामत नहीं की जाएगी। यही ज़िल्लत तुम्हारे लिए काफ़ी होगी कि तुम ज़िंदा रहो और ज़लील ख़ार होते रहो। तो इससे पहले तो वो साथ साथ चल रहा था हुर, अब जब इमाम के साथ ये बात हुई उसके बाद हुर ने थोड़ा सा फासले के साथ अलग इमाम के साथ चलना शुरू कर दिया। ये हुर का आना और फिर अब जो है पहले मंजिल कूफा थी। जब ये काफिला मक्का से निकला तो कूफा की तरफ इसका सफ़र का रुख था, लेकिन अब हुर के आने के बाद अब रुख जो है वो ना कूफा की तरफ था ना वापस मक्का मदीना की तरफ, अब किसी दूसरी तरफ का रास्ता इख्तियार करके चल रहे थे। हुर ने यहाँ से इब्ने ज़ियाद के लिए ख़त भी भिजवा दिया था और उसके तरफ से जो हुक्म आना था उसके इंतज़ार में था। हुर का यहाँ पर जैसे कि जो मशहूर वाक्य अर्ज़ किया कि जब इमाम ने इसको कहा कि तेरी माँ तेरे गम में बैठे, तो इसने जवाबन कहा कि मुझे अगर अरब में आपके अलावा कोई भी ये कहता तो मैं उसको भी वही जवाब देता, लेकिन चूंकि आपकी माँ सैयदा निसाए आलमीन है और जनाब जहरा का नाम लेना सिवाय एहतराम के मैं नहीं ले सकता। हुर का जनाब सैयदा के साथ ये लगाव और सैयदा के एहतराम और सैयदा की मोहब्बत जो उसके दिल में थी, एहतराम था, ये बाइस बना। उलमा कहते हैं कि ये अकीदत, ये एहतराम सैयदा का ये बाइस बना कि जो हुर की नजात का वजह बनी। और हुर यहाँ जबकि आया है तो यजीद के लश्कर के एक जर्नेल के तौर पे, लेकिन उसका अंजाम शहदाए करबला के उसमें होता है। क्योंकि याद रखिएगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ आने वाले असहाब, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ तशरीफ़ लाने वाले तमाम लोग, जो भी करबला में आया, जो भी रोज़ा आशूर तक इमाम के साथ रहा और जिसने अपनी जानें कुर्बान की, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं था कि जो हादसाती तौर पर आ गया हो या बाय द वे आ गया हो, बल्कि ये सब लोग वो थे कि जिनकी पाकीज़ा ज़िंदगियां थी, जो अपने आप को खुदा के हलाल और हराम के पाबंद रखे हुए थे और जो खुद दीन की शरीयत की पाबंदी करने वाले, लिहाज करने वाले लोग थे और अपने दौर के अपने इलाकों के मशहूर शख्सियात थी, पाकीज़ा थे, तकवा में मशहूर थे, गरज कि वो ऐसे सिफात के हामिल थे, इस तरह के किरदार के हामिल थे कि उनको खुदा ने शहदाए करबला के लिए मुंतखब कर लिया। तो आज भी ऐसा ही है, बाज़ लोग सिर्फ़ दावे करने वाले होते हैं, सिर्फ ऐलान करने वाले होते हैं, लेकिन उनका किरदार, उनका अमल उनके कौल की तस्दीक नहीं करता। बस ये शहदाए करबला ऐसे हैं कि इनका अमल, इनका किरदार इनके दावे की, इनके कौल की तस्दीक करता है। तो जो भी इनके रास्ते का राही बनना चाहेगा, शहदाए करबला का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफ़िले में शामिल होना चाहेगा, तो उसको अपने अमल, अपने किरदार के ज़रिए से अपने कौल की तस्दीक करनी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।